وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ان کی ہوش مندی بخشی. کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا. یعنی ابراہیم ٹین ایج میں اپنی خاندان کی رسموں اور شرکیہ چیزوں پہ تنقید کرتے ہوئے دکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سلیم الطبع شخص ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ جس میں سے شرک کی بو آتی ہو اور اللہ کی ناراضگی ہو. قوم کا جواب وہی ہے جو آج بھی ہوتا ہے، باپ دادا کرتے تھے، کیا کریں، ان کی رسمیں، ان کے طور طریقے. انہوں نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ آج بھی اب کسی کی رسم پہ بات کریں نا کہ نہیں یہ پیلا جوڑا کچھ نہیں ہوتا، یہ مائیاں کچھ نہیں ہیں، اور برات کی تو ضرورت نہیں، اور سمپل اسلام تو ایسی شادی جاتا ہے. تو لوگ کہیں، آر یو سیریس، برات کے بغیر بھی شادی ہوتی ہے؟ جیسے اگر میں آپ کو بھی کہہ دوں کہ پوری اسلامی ہسٹری میں، یہ اسلامی تاریخ میں، یہ اسلامک شریعہ میں لفظ برات ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں لفظ برات کے بغیر؟ کیا اس کا کانسیپٹ ہے؟ پہلے دوسرے گاؤں سے لڑکیاں لینے جاتے تھے اور رات کو لیٹ آنا ہوتا تھا اور اس کا سامان اٹھا کے لانا ہوتا تھا، جہیز کی صورت میں جو ڈکیتی کی واردات کر کے لاتے تھے تو جوان کڑے مردوں کو لے جاتے تھے کہ واپسی پہ سامان اٹھا کے لائیں گے، اس کو برات کہتے تھے لوگ. اور یہ انڈیا سے بات شروع ہوئی اور پیچھے سے چلتی گئی کہ لڑکی کا سامان اٹھانے، دہیج، دہیج کہتے ہیں غالباً اس کو اٹھانے کے لیے، لانے اور سیکیورٹی کے لیے لے جاتے تھے کہ راستے میں کوئی چوری چکا نہ ہو جائے، سونا چاندی. یہاں سے برات کا تصور شروع ہوا. آج آپ دیکھیے وہ گھوڑے اور ٹانگے اور قسمیں بدل گیا، اور برات والے ہم برات سے، یہ ان کی کرسیاں، یہ ہماری کرسیاں. کتنی گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ برات والوں کو صحیح پروٹوکول نہیں دیا. بھئی ہمیں کچھ دے نہ دیں، ہمارے مہمانوں کھانا بڑا اچھا کھلا دیجیے گا، یہ کہاں سے آئی؟ اب اگر میں آپ سے یہ باتیں کروں تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر کسی میں آ رہا ہو کہ آر یو سیریس. جب پہلی دفعہ میں نے بھی یہ بات سنی ہوگی، مجھے بھی حیرت ہوئی. ہم تو برات کے ساتھ جانے کو اپنے لیے بڑی شان سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم وقت کے رواج پر بات کرو گے، لوگ ایسے ہی کہیں گے، کیا بات ہے، مذاق تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے. اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. ابراہیم کیوں نہیں ڈرے؟ حق تھا ان کے پاس، سچ تھا. چنانچہ انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف اس کے ایک بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی ایسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. ان کے شعور کو بیدار کیا کہ اگر یہ بڑا بت ان کو نہیں بچا سکا تو بتاؤ تمہیں کہاں یہ بچائے گا. یہ بات سن کر یہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. شرمندہ ہو گئے. ابراہیم نے کہا، اچھا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پر؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کو اور اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. دیکھیے قوم کی کہانی ابراہیم کے ساتھ. ہدایت کی چنگاری اٹھی تھی قوم ابراہیم کے دل میں. شرمندہ ہو گئے تھے کہ پتھر کے بت خود کو تو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے، ہمیں کہاں بچائیں گے. لیکن ہدایت کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. موسیٰ کے جادوگروں کے دل میں ہدایت کی جوت جاگی، فوراً کا آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے. انہوں نے اس موقع کو اویل کیا. اپرچونیٹیز ڈزنٹ ناک ٹوائس، موقع جو ہوتے ہیں نا بار بار نہیں آتے. ہدایت ایک غیور مہمان ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ایگو ہے. ایک دفعہ آپ کے دروازے پہ ڈھک ڈھک کرے گا، اگر آپ دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے وہ آپ کو ناراض کر کے، یا آپ اس سے ناراض ہیں وہ چلا جائے گا. جو لوگ مواقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے نا، ان کو پھر مواقع ملتے بھی نہیں ہیں. ایک ہدایت کے موقع سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے نا دورہ قرآن میں، अगर आपने दिल खोल दिया तो अगला मौका आपकी जिंदगी में जरूर आएगा इंशाल्लाह। आपको पता भी नहीं होगा, आप चाहेंगे भी नहीं, आपका भी कोई प्लान भी नहीं, लेकिन आप कुरान के लिए आगे जुड़ाएंगे अगर आपको कोई मौका मिलेगा। क्यों? कि एक दफा हिदायत की कॉल अटेंड कर ले तो ये बार बार आती है, और जो इस कॉल को आप अटेंड ना करें फिर थोड़े दिन के बाद चली जाती है। और याद रखिए कि गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड, जितना डिले करेंगे उधर जाएगी। और यही बात है, फिर दूसरी बात है कि इब्राहिम इतना कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत थी। मोहब्बत फातह आलम, और मोहब्बत कुर्बानियां देना सिखाती है। हिदायत पर आना एक सोचा समझा मंसूबा है, बाय चांस नहीं, आप में से कोई यहां बाय चांस नहीं आया। अल्लाह ने आपको एक प्लान के साथ भेजा है। अल्लाह अपनी किताब के लिए हर रोज नहीं भेजता, वंस अ वाइल कोई आ जाता है किसी के कहने पे। ठहरता वो है जिसको वाकई अल्लाह ने चूज करना है। फिर आप देखिए कि इब्राहिम को जलाने के लिए आग जलाई, और इब्राहिम को जलाना चाहते थे, अल्लाह ने कहा या ना रुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम। पहले देखिए इब्राहिम कूद कैसे पड़े, अकल ने कितनी तावीलें सिखाई होंगी। देखो तुम अकेले हो, देखो अगर तुम भी मर गए तो फिर क्या होगा, फिर दीन कौन फैलाएगा। लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, अकल है महफे तमाशा लबे बाम अभी, कुछ इसी तरह से। अकल का फैसला नहीं था ये, लिख लें अकल बड़ी होशियार है। जब आप अकल से पूछेंगे ना कि ये काम करूं कि ना करूं, कभी भी नहीं करेंगे। वो अकल से पूछने वाले हैं जो नहीं कर रहे। कैसे जाऊं, देर होगी, लेट हो जाएंगी, ये होगा, वो होगा, कुर्बानी, जॉब, बच्चे, घर खाली, बूढ़ी हूं, थक जाऊंगी, रात जागी रही, सोई रही। अकल से आप पूछेंगे तो आप कल नहीं इधर आएंगे। क्या मिल रहा है आपको इधर आके, घर बैठ के सुन ले। और घर आके कभी आप घर बैठ के ऐसे सुन जाए तो बड़ी मुबारक की बात। सुनते हैं माशाल्लाह, आज भी कई लोग हैं आपके साथ सुन रहे हैं, इस वक्त भी मजबूरियों में सुन रहे हैं। उनको मौका मिले वो जरूर आके बैठ जाएंगे, और अगर मौका हो बड़ी चीज को डी लेंगे तो फिर ये मजबूरी नहीं है। नतीजा क्या हुआ, आप अपने दिल से आके बैठते हैं, आपका दिल रोज आपको उठाता है। आप क्यों सो के उठ जाते हैं, हम भी सो रहे होते घर में, जोर तो मैं कोई रोक भी नहीं सकता था सोने पे, सो जाते। लेकिन आपके मेरे दिल ने मुझे जगा दिया, हमें तो नींद ही नहीं आती। इधर मैं आई सुबह तो मैसेज एक लिखा हुआ था शुरू में कि आई एम वेटिंग फ्रॉम फजर, फजर टाइम से बैठी हुई हूँ इस क्लास के इंतजार में। पता नहीं वो किस टाइम जोन से सिस्टर, लेकिन मैंने देखा इस चीज को। पिछले साल जो दौरे कुरान होता था तो अतीक वहां इस बात की कि आप लोगों की फजर का टाइम होता था, हम यूके में जब करते थे वहां की जो सुबह, आपकी अभी फजर हो रही होती है, तो तब भी सैकड़ों लोग रूम में होते थे। मैंने देखा कि फर्क कोई नहीं पड़ा था इतना, बल्कि लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए कि अब तो और अच्छी रूटीन बन गई है कि पारा सुन सुना के फिर 8-9 बजे सोते हैं, फजर के बाद बैठते हैं और पूरा सुनते हैं, इतनी फोकस्ड। और बच्चे भी सोए थे, बच्चे वाली माओ को बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उस वक्त में मेरा ख्याल है कि रिप्ले हो रहा है, तो रिप्ले इस टाइम तो हर एक है। लेकिन याद रखिए कि जब तक हमारा दिल नहीं गवाही देगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अकल से पूछ पूछ के तो आज तक जिए, आज दिल से पूछ के देखिए। अगर दिल आपका मेरा चल पड़ा फिर वो कहते हैं दिल पे तो इख्तियार नहीं है। कोई आपसे पूछे क्या करना है, घर से सुन लो, नहीं दिल पे मेरा इख्तियार नहीं है, मुझे जाना है, मेरा रास्ते का वक्त भी इबादत है, और मैं अल्लाह के लिए निकलूंगी नहीं तो क्या घर बैठ के सारे काम हो जाएंगे। तो इब्राहिम कूद पड़े। अब हुआ क्या, उन्होंने सोचा कुछ और, अल्लाह ने क्या किया, वारादु बिही कैदन फजअलना हुमुल अखसरीन। वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करें, मगर हमने इनको बुरी तरह नाकाम कर दिया, और हम इसे और लूत को बचाकर इस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनियावार के लिए बरकतें रखी हैं। सोचिए इब्राहिम आग में क्यों नहीं जले, क्योंकि वो अल्लाह की मोहब्बत की आग में जल रहे थे। बड़ी आग हो तो छोटी आग कुछ नहीं कहती। इसी तरह याद रखिए, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की आग लग जाती ना, उनको इस रास्ते की छोटी छोटी तकलीफें नहीं रोकती। एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, फिर भी जाना है। गाड़ी का खर्चा बहुत बढ़ गया फिर भी जाना है। दूर बहुत है फिर भी जाना है। रश है तो बहुत जाना है। 4th of July है तो भी जाना है। बच्चे घर है तो भी जाना, जाना जाना जाना। बारिश है तो भी जाना, क्योंकि अंदर एक आग लगी हुई है। दीन के रास्ते की मुश्किलात सिर्फ ठंडे लोगों को आती हैं। लिख लें, जो कुरान सुनते वक्त ठंडे होते हैं ना, वो इब्राहिम की तरह इस गर्म आग के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए कि आग जलाएगी, अल्लाह ने उस आग से सल्व कर ली। अल्लाह की चीज है, अल्लाह जब चाहे उसको तेज करे, आगे ज्यादा कर दे। आप अपने ऊपर देखिए कैसे, बस आप देखिए कि चूल्हा आपका है ना, आप कम जलाएं, आहिस्ता तेज करें, टेम्परेचर बढ़ा लें, अवन कम करें, आपका है ना, तो आग किसकी। अल्लाह की, जिस रब ने छोटा सा ओवन आपके मेरे हाथ में दे दिया, पूरी दुनिया की आग उसकी, पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई, रिवायत में आता है उस वक्त। लेकिन अगर इतनी ठंडी होती कि इसमें इब्राहिम फ्रीज होते तो कहानी कुल नारुकुनी बर्फ व सलामन, सलामन के रूम टेम्परेचर पे रहना, ये ना कि इतनी ठंडी हो जाए, यानी आग अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए इतना तैयार है कि वो पूरी ठंडी हो जाए, तो कहा नहीं, रूम टेम्परेचर पे रखना मेरे इब्राहिम को, अब गर्मी की वजह सर्दी ना लग जाए। ये से होता है अल्लाह से जज्बाती ताल्लुक, अल्लाह से ठंडा ठंडा गैर जज्बाती ताल्लुक होगा, ना ऐसी कुर्बानियां दी जाती हैं और ना अल्लाह की ऐसी मदद आती है। अल्लाह को गर्म लोग चाहिए, और हकीकत है कि अम्बिया कराम सब्र के मीनार थे। एक एक की आजमाइश, अब इब्राहिम की आजमाइश आग में डाल के की जा रही है, अगले अंबिया के हम और पढ़ेंगे, अपने आप से पूछिए। और जज्बात जो होते हैं ना, ये कुर्बानी देना सिखाते हैं। इमोशंस बेस हैं दुनिया में बच्चे के आने की, जज्बात ना हो तो कभी कोई बच्चा ना पैदा हो। जब इमोशंस के साथ इस जिंदगी का ताल्लुक है ना, इसी तरह दिल की जिंदगी भी जज्बात से है। तो अगर आप कुरान सुन रहे हो और आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, वो मद्दो जजर नहीं है, वो जो पीछे पढ़ चुके हैं हम सूरत में कि कैसे झाग उठती और पीतल तांबे को पिघलाएं तो उसके ऊपर भी झाग आती, अगर मेरे आपके अंदर कुरान आप सुनते का कोई प्लान्स नहीं है, कोई इरादे नहीं है, कोई हलचल नहीं, क्या करूं, क्या कर दूं, कैसे करूं, अब जिंदगी कैसे गुजारूं, बच्चों को कैसे लूं, मियां को कैसे सेट करूं, तो फिर समझिए कि अभी वो मदद नहीं आएगी अल्लाह की। और मैंने वो लोग देखे हैं छह छह बच्चों के साथ दो दो प्रेम्स को हांकते हुए वो कुरान सुनने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ले लेते मत। और जैसे दिल ठंडा होता है सब कुर्बानियां देनी मुश्किल होती, क्यों? जज्बे जिंदा होते हैं। जब तक मेरे अंदर जोश है ना, मैं यहां रोज आऊंगी, रोजा है कि नहीं, आई डोंट माइंड, मुझे जाना है, नींद पूरी हुई नहीं, मुझे जागना है। लेकिन एक लम्हे के लिए मैं सोचूं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैं आपको अभी भी, अगर आपको आजमाना है तो मैं आजमा सकती हूँ, कल यहाँ बैठ के आपको पिछले साल के दौरे कुरान का पारा सुनो, यकीन करें आप इंजॉय करेंगे। आई एम श्योर कि आपको इतना ही फायदा होगा, इतना ही मजा आएगा, शर्त यह कि हमने माहौल कैसा बनाया हुआ है। लेकिन मेरा अजर किधर गया, मेरा हिस्सा किधर गया? अल्लाह मैं जीते जी क्यों छोड़ दूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम क्या करें, ये कब होता है? जब अल्लाह हमसे कराता है, मेरा हिस्सा चला जाएगा। मुझे याद है एक जगह अपने साथियों की ड्यूटीज चेंज की, तो एक ड्यूटी किसी और की थी, तो उनको कहा कि आप अब किसी और जगह चले जाएं तो छोड़ दें, तो बहुत रोई कि आज कल तक मेरा इसमें हिस्सा था, क्या बल्ला मेरा हिस्सा निकाल रहा? बल्ला ही अगर कोई दुनियादार होता तो वो पर खुश होता कि चलो काफी साल अब मैंने ये ड्यूटी दी, अब कोई और दे मुझे करना। अल्लाह के रास्तों में घुसड़ना पड़ता है, भागो भागो, अल्लाह मुझे कहीं जगह, अल्लाह प्लीज खुद जगह बनाएंगे तो बनेगी। रात को कई लोग ऐसे आए, बाद में बातें हो रही थी उनसे, किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्या तरीका है कि आप यहाँ रुक जाएं? मैंने कहा देखे मेरी जिंदगी का असूल है, मैंने कभी अल्लाह के किसी रास्ते में ना नहीं की, शर्त है कि मेरी पहले से कमिटमेंट ना हो किसी से, या मैं उस वक्त अवेलेबल हूँ, आप मुझे रात भी कहेंगे तो मैं दर्स के लिए आऊंगी, मैंने ना नहीं की, लेकिन मुझे इधर मैं नहीं बुलाऊंगी, आपका जोश और आप अल्लाह से कहें मुझे क्यों कहते हैं, आपकी तड़प आपको रोकेगी, आप चाहते हैं आपको और कुरान सीखना है, तड़पे रोए अल्लाह से मांगे, अल्लाह को शो करें, कमिटमेंट दिखाएं, अल्लाह से वादे करें। आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आखिरी 2 साल जो थे उसमें मदीना से लोग आने शुरू हो गए थे, पहले साल सिर्फ 6 लोग आए, बात हुई इस्लाम अच्छा लगा, एक घाटी में बैठ के अंदर मुसलमान हो गए, आपने कहा जाओ चले जाओ वहां के अपने हिसाब से काम करो, वो चले गए। एक साल में उन 5-6 लोगों से जो बीच ही डले थे, अगले साल आए तो 72 लोग आए जो अंदर बैठे, और उनकी अब एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी मदीना में लोग घर घर में आपका रास्ता देख रहे हैं। मुसअब बिन उमैर को अल्लाह ने साद बिन जुरारा और साद बिन माज की ऐसी मायदीन 3-4 लोगों ने वहां काम शुरू कर दिया, काम कर दिया। और जब अल्लाह के नबी को बुला रहे थे, आपने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर आए, फिर एक दिन जब उन्होंने कहा कि देखो ये छोटा फैसला नहीं है तुम मुझे बुला रहे हो, हजरत अब्बास जो आपके चचा थे अभी मुस्लिम नहीं थे वो मीटिंग में मौजूद थे, खड़े हो गए, कहा देखो ये अलग बात है कि हम इस शख्स के दीन को भी नहीं मान रहे, लेकिन ये हमारा बच्चा है, कल अगर इसको वहां जाके छोड़ना है अभी छोड़ दो, इसको जाके कत्ल करना है अभी छोड़ दो, और अगर इसको कह तो रहे हो कि चलो हम तुम्हारा साथ देंगे और साथ नहीं देना, इधर छोड़ दो, हमने इसको नहीं छोड़ा हुआ। ऐसी जज्बे वाली तकरीर की, और वही देखिए जो मदीना के चंद लोग थे जब वो अल्लाह के नबी गए तो उन्होंने फिर कितनी मुश्किलें सही, अगर उन्होंने पहले से ये फर्मनेस ना दिखाई होती तो क्या मदीना में जो चैलेंजेस सहाबा को पेश है अनसार उसको भुगत सकते थे? मुहाजरीन तो कर ही लेते, वो तो आए थे घर छोड़ के, और ये किबले की तब्दीली से लेकर अगले कितने वक्त जो आप पीछे पड़े ये अनसार का इम्तिहान था। तो याद रखिए इस सारी बात को अपने लिए सदका जारिया बना लीजिए कि इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो गई थी, आज भी आग चल रही है, आज इस दुनिया में सिर्फ एक इब्राहिम को नहीं, इब्राहिम की नस्लों को जलाने के लिए कुफर की, इल्हाद की, बेदीनी की और एथिज्म की आगें जल रही हैं। आज अगर मैं और आप ठंडे ठंडे इस दुनिया से गुजर गए तो हमारा हिस्सा नहीं लगा। कहते हैं कि जब इब्राहिम की आग जल रही थी तो एक बुलबुल या छोटा सा कोई भी परिंदा था, उसने एक कतरा अपनी जूंच में डाला तो लाके उस आग पे लालने लगी, तो दूसरे परिंदों ने उसको कहा तुझे क्या हो गया, इतने से कतरे से आग बुझेगी? तो कहेगी मुझे क्या, कल क्यामत के दिन ये कह दूंगी कि अल्लाह मेरी चोंच बड़ी छोटी थी, मेरी चोंच में इतने ही पाने हैं। और वल्लाही मैं खुद को भी छोटी सी एक चिड़िया की तरह ही सोचती हूँ, और मैं अक्सर अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मुझे पता है हमारी इन कोशिशों से कोई इतना बड़ा फर्क कोई नहीं आना, कितने ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हम सुरखरू हैं, कल कह सकेंगे कि अल्लाह हस्बे कुदरत हस्बे तौफीक हमने इस दुनिया में कुफर शिर्क बेदीनी बेहयाई की आग बुझाने की कोशिश की थी, हो गया तो बहुत खुश है और नहीं तो फिर हम तो दुनिया से चले जाएंगे। आज उम्मत मुस्लिमा अगर इस आग को बुझाने की जो ग्लोब पे लगी हुई है कोशिश नहीं करेगी वो मुजरिम है। आज आप मैं इस जोश के साथ उठेंगे, वो जोश इस किताब से मिलता है, ये बातों से नहीं मिलता, ये गुनारों से नहीं मिलता, ये कौमी तराने पढ़ने से नहीं होता, ये मिल्ली नगमे पढ़ने से नहीं आता, ये झंडे हाथों में लगाने से नहीं आता, ये जोश आता है जब हम इन नबियों की कहानियां पढ़ते हैं। आप अपने ऊपर ले, मैं फिर इस पे आगे जा ही नहीं पा रही, आप इमेजिन तो करें आग इतनी बड़ी, और ये छोटी सी आग नहीं थी कि चलो जाके उंगली डाल दो, फायर वर्क नहीं था, ये इतनी गहरी खाइयां खोदी थी उन लोगों ने, फिर उसको ईंधन से भरते रहे कई साल, सिर्फ उसमें ईंधन भरते रहे। औरतें जो थी जाहिल उस दौर की, वो मन्नत मानती थी कि हमारा ये काम हो गया ना तो हम इब्राहिम की आग में ईंधन डालेंगी, इतने वो दुश्मन थे इब्राहिम के। और जब आग भड़कनी थी अब सवाल पैदा होता था कि आग जलाए कौन, जो करीब जाएगा आग जब उसमें जलेगा, कर करा के उसका इंतजाम किया। अब मसला ये था कि इब्राहिम को फेंके कैसे, जो इब्राहिम को धक्का देने करीब जाएगा वो आग में जलेगा। फिर उस वक्त फर्स्ट टाइम उन्होंने वो मंजबीक इजाद की जिसको आज के दौर में आप तोप कह लीजिए, गुलेल कह लीजिए, एक उस ऐसी जगह थी उस पर बिठा के इब्राहिम को दूर से फेंका था, इतनी तेज आग थी, महल बनवाया था लोगों ने करीब, फिर जो भी उस दौर का था कि मैं देखूं इब्राहिम कैसे जलता है। आगे सुनेंगे हम सूरह कसस में, लोग शहर के जमा हो गए थे कि आज इब्राहिम को जलने का मंजर देखे। लोग आज भी तो मुसलमानों को जलाना चाहते हैं, अब जला रहे हैं, फिजिकली जला रहे हैं, आप क्या बातें करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है। कभी आपको लाशें और वो बच्चों के जले हुए काले चेहरे नहीं दिखे जो मुसलमानों के जल रहे हैं, और बच्चों की गर्दन पे पांव रख के न्यू बॉर्न बेबीज को किल करते लोग नहीं दिखे? नजर कमजोर है मुसलमान की तो और बात है, आज वही जुल्म और बर्बरियत कई गुना बढ़ चुका है जो उसमें था, लेकिन इब्राहिम कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हुए। हम सिर्फ आंखें बंद करके हम कहते हैं शुक्र है मुझे तो नहीं लगी ना आग, शुक्र है मेरा बच्चा तो सिक्योर है। क्या दिल में गुजरी होगी इब्राहिम के, मुझे मूसा याद आ रहे हैं सांप को पकड़ते हुए, चाहे वो असा से सांप बना था, क्या हाथ गुजरी होगी। आपको कोई नकली सांप भी कहे ना पकड़ो तो मैं तो कभी ना पकड़ू, मूसा को तो कहा पकड़ो इसको, अलकेहा फखुजा अलकेहा फखुजा, पिछले पारे में आपने पढ़ा है। ये इम्तिहान देने पड़ेंगे, अल्लाह के हुक्म पे चीजें छोड़नी पड़ेंगी, अल्लाह के हुक्म पे लेनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस पे यकीन रखिए वारादु बिही कैदन, उन्होंने उसके साथ इरादा बुराई का किया था, लेकिन फजअलनाहुम अलअखसरीन, अल्लाह ने उनको बुरी तरह नाकाम किया। आज भी अल्लाह करता है सब, सिर्फ उस वक्त करेगा जब हम और आप इसके लिए रिजर्व करेंगे और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। क्या हुआ, इब्राहिम आग से बच गए, और रिवायात पढ़ के तो देखिए इब्राहिम कहते हैं मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो है जो मैंने आग में गुजारे, कई दिन रखा, सुकून मिला, आसमान से अल्लाह की तरफ से सलाम आते थे, फरिश्ते आके हाल पूछते थे। दुआ कीजिए कि हमें ये जौके खुदाई मिल जाए, अल्लाह के रास्ते की थकत में ज्यादा मजा है क्योंकि इसमें अल्लाह की तरफ से तसल्ली है, ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, और अल्लाह ताला हमें ये तड़प लगा दे कि हमने कुछ करना है।